रेहान को रश्मि पसंद थी, उसको परेशान करने में उसे मजा आता था, पर रश्मि ने उसके बारे में गलत सोच लिया। ये सुनकर रेहान को काफी बुरा लगा और वो अपनी बात कहकर वहां से जाने लगा। अब रश्मि को भी एहसास होने लगा कि उसने कहीं सच में उसे गलत तो नहीं समझ लिया। वो तो उसे उन्हीं आवारा लड़कों की कैटेगरी में डाल चुकी थी जो सुंदर लड़की देखते ही उनके पीछे हो जाते हैं और उनके पास जाने की कोशिशें करते हैं, पर शायद रेहान ऐसा था नहीं। रेहान को जाता देख रश्मि को अच्छा नहीं लगा, पर उससे उसे रोका भी नहीं जा रहा था। फिर उसने बहुत हिम्मत करके धीरे से कहा, रेहान। पहली बार उसने रेहान का नाम लिया था। उसकी मीठी आवाज में अपना नाम सुनकर रेहान के कदम रुक गए, दिल जोरों से धड़क उठा, पर वो उसकी तरफ नहीं मुड़ा तो रश्मि ने फिर से कहा, वैसे तो मुझे भूख नहीं है, पर अगर आप अब भी मुझे ट्रीट देना चाहे तो मैं थोड़ा खा लूंगी। रेहान ने उसकी तरह मुड़कर गंभीरता से कहा, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप जा सकती हैं। इससे ज्यादा शांत रह पाना रश्मि के लिए बहुत मुश्किल था। उसने चिढ़कर कहा, अब ज्यादा नाटक मत करो, समझे? वैसे भी ये सीरियस लुक सूट नहीं करता तुम पर। रेहान ने उसकी बात सुनकर उसको तीखी नजरों से घूरा तो रश्मि ने मुंह बनाकर कहा, ठीक है, घूरते रहो मुझे, मैंने तो तुम्हारे लिए ही हामी भरी थी। मरी नहीं जा रही मैं भी तुम्हारे साथ लंच करने के लिए। जा रही हूं मैं, तुम्हारा लंच तुम्हें ही मुबारक हो। वो गुस्से में जाने लगे तो अब की बार रेहान ने हड़बड़ाकर जल्दी से कहा, ओके चलो। उसकी बात सुनकर रश्मि के लबों पर तीखी मुस्कान फैल गई। वो इतराते हुए उसकी तरफ घूम गई तो रेहान कैफेटेरिया की तरफ बढ़ गया। रश्मि भी उसके साथ चलने लगी। वहां सभी एम्प्लॉय उन्हीं दोनों को देख रहे थे क्योंकि शान और रेहान में से कोई भी कभी उस तरह नहीं गया था। उनका लंच उनके कैबिन में ही जाता था और तो और आज रेहान एक लड़की के साथ वहां आया था। रेहान ने एक टेबल के पास जाकर चेयर पीछे खींची पर रश्मि दूसरी चेयर पर जा बैठी। ये देखकर रेहान को खुद पर ही हंसी आ गई और वो खुद उस चेयर पर बैठ गया। उसे देखकर ही लड़का उनके पास आ गया तो रेहान ने रश्मि को ऑर्डर करने को कहा। रश्मि तो थी एकदम बिंदास लड़की, उसने बिना हिचकिचाए अपने लिए लंच ऑर्डर कर लिया और मेन्यू कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं मैं शान के साथ लंच करता हूँ, तुम अपने लिए ऑर्डर कर दो। रश्मि ने कंधे उचकाकर इट्स ओके कहा और लड़के को अपना ऑर्डर बता दिया। उसके बाद वो अपना फोन चलाने लगी। रेहान बड़े प्यार से उसे देख रहा था, ये बात रश्मि को भी पता थी। कुछ देर तो वो उसे इग्नोर करती रही, फिर उसने फोन नीचे रखा और उसे देखकर बोली, अगर आप मुझ पर चांस मारने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं पहले ही बता दूं कि मुझे प्यार व्यार में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, मैं बस अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ। प्यार शादी इसके बारे में मैंने ना कभी सोचा है ना ही सोचूंगी, क्योंकि ये बस मुझे आफत लगती है। पहले ही जिंदगी में कम शापे हैं जो खुद से प्यार नाम की मुसीबत और डाल लूं अपने सर पर, इसलिए मुझ पर अपना टाइम और एफर्ट्स बर्बाद मत कीजिए, मेरे तरफ से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। रेहान जवाब में मुस्कुराया, वैसे तो मैं चांस फांस मारने की कोशिश कर नहीं रहा हूं, पर फिर भी तुमने मेरे बारे में इतना सोचा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। वैसे एक बात बताओ, प्यार मोहब्बत से तुम्हारी ये चेड़ नफरत जो भी है उसकी कोई खास वजह? किसी ने प्यार में धोखा दे दिया क्या? जी नहीं, मेरा दिमाग अभी तक खराब नहीं हुआ है तो मैं जानबूझकर प्यार के दरिये में कूदकर खुदकुशी करूं। इतना फालतू वक्त नहीं था मेरे पास कभी भी, पर हाँ दूसरों को देखकर बहुत कुछ सीखा है। पहले प्यार करो फिर बैठकर उसके लिए आंसू बहाओ। आज इससे मोहब्बत हो रही है तो कल उससे, आज इसके बिना जान निकली जा रही है तो कल को वही तुम्हारे जान की दुश्मन बन गई है। तुम लड़कों का कोई ईमान होता ही नहीं है, जहां हसीन चेहरा और खूबसूरत बदन दिख जाए वहीं लार टपकाते टपकाते हुए पहुंच जाते हो। किसी एक के होकर तो रह ही नहीं सकते। रोज तुम्हें प्यार होता है एक नई लड़की से, रोज किसी से सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा करते हो और एक ही दिन में तुम्हारी सारी जिंदगी खत्म हो जाती है, इसलिए अगले ही दिन किसी और के आगे पीछे दुम हिलाते घूमने लगते हो। बुराई प्यार में नहीं, तुम लड़कों की सोच में है। पहले के लोग भी प्यार करते थे और अपनी सारी जिंदगी ईमानदारी से उसी एक शख्स से प्यार करते हुए बिता देते थे, चाहे वो साथ हो या नहीं। अब प्यार शब्द बस कहानियों में रह गया है, और अगर रियल लाइफ में है भी तो करोड़ों में कोई एक निकलेगा जो प्यार के सही मायनों को समझता हो, इसलिए मैं जानबूझकर खुद की बर्बादी की जिम्मेदार नहीं बनना चाहती। रश्मि जो शुरू हुई तो बोलती ही चली गई। रेहान आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगा। जैसे ही वो चुप हुए रेहान ने हैरानी से कहा, इतना कुछ भरा हुआ है तुमने अपने छोटे से दिमाग में। रश्मि ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, लड़कों की तारीफ में तो मैं पूरी बुक लिख डालूं। उसकी बात सुनकर रेहान हंस पड़ा। तब तक में रश्मि का ऑर्डर भी आ गया तो रेहान ने मुस्कुराकर कहा, बुक बाद में लिखना, अभी लंच करो। रश्मि ने उसे देखकर मुंह बनाया और अपने लंच को एंजॉय करने लगी। रेहान अब भी उसे ही देख रहा था। रश्मि ने लंच किया फिर उठने लगी, तभी रेहान ने उसे देखकर कहना शुरू किया, पांचों उंगलियां बराबर नहीं हुआ करती, पता है तुम और शान दोनों एक जैसे हो, कुछ लोगों को देखकर सबको उसी पैमाने में नापने लगते हो, पर ये सही नहीं है। मैं उसे बस इतना ही कहता हूँ कि वक्त आने पर उसकी ये सोच भी गलत साबित होगी, तब जब उसे कोई सच्चा प्यार करने वाली लड़की मिलेगी। और मुझे तो विश्वास है कि जल्दी ही भाभी अपने प्यार और सच्चाई से उसकी सोच बदल देंगी। तुम्हें भी मैं यही कहूँगा कि इंतज़ार करो, जिस दिन तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा लड़का आएगा जो सिर्फ तुम्हें चाहेगा, तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगा, उस दिन तुम्हारी लड़कों के बारे में ये सोच ज़रूर बदलेगी। क्योंकि सभी लड़के प्यार को खेल नहीं समझते, कुछ अपनी सारी मोहब्बत बस किसी एक पर लुटा देते हैं। वैसे सिर्फ लड़के नहीं, आजकल लड़कियों का भी यही हाल है, तो किसी एक को गलत ठहराना गलत है। सब वक्त वक्त की बात है। आज तुम्हें प्यार से नफरत है, एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम खुद किसी के प्यार में दीवानी हो जाओगी, तब तुम्हें प्यार से ज्यादा खूबसूरत चीज कोई और नहीं लगेगी। उसकी बात सुनकर रश्मि ने मुस्कुरा कर कहा, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, देखते हैं। अब तो रिश्ता जुड़ गया है तुमसे, तुम भी यही हो और मैं भी, रेहान ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। वहीं रश्मि ने आंखें छोटी करके उसको घूरते हुए कहा, कैसा रिश्ता? तुम मेरी भाभी की बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड का इकलौता देवर, रेहान ने अर्थपूर्ण दृष्टि उस पर डाली तो रश्मि खींच कर बोली, भाड़ में जाओ तुम, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कभी होगा। वो मुंह बनाकर पैर पटकते हुए वहां से चली गई। रेहान उसको चिढ़ता देख मुस्कुरा उठा और खुद से ही बोला, अब तो देखना ही पड़ेगा कि कभी हमारा कोई रिश्ता जुड़ता है या नहीं। वो मुस्कुराकर शान के कैबिन की तरफ चला गया। दोनों ने साथ में लंच किया, फिर मीटिंग के लिए निकल गए। कल से शूटिंग शुरू करनी थी तो सब काम आज निपटाने थे, उन्हीं में दोनों बिजी थे। रात के 9 बज गए थे, पर वो घर नहीं पहुंचा तो अर्पिता जी ने आरवी को उसे फोन करने को कहा। बेचारी आरवी उससे बात तक नहीं कर रही थी, पर उन्हें इनकार भी नहीं कर सकी। बहाना बनाया कि नंबर नहीं है उसके पास, पर अंशु ने झट से उसे शान का नंबर सुना दिया। शान ने उसे अपना नंबर याद करवाया हुआ था ताकि कभी जरूरत पड़े तो वो उसे फोन कर सके।
बेचारी आरवी का मुंह छोटा सा हो गया, उसने मुंह लटकाते हुए उसका नंबर मिला दिया। शान की कैबिन में ही वो दोनों बैठे काम कर रहे थे, तभी शान का फोन बज उठा। उसने अनॉन नंबर देखकर फोन इग्नोर कर दिया तो आरवी की जान में जान आई। उसने झट से कहा, बड़ी माँ वो फोन नहीं उठा रहे, नया नंबर देखकर नहीं उठा रहे होंगे, सब आप दोनों की गलती है। शादी को 1 महीना हो गया पर अभी तक एक दूसरे का नंबर तक नहीं लिया, चलिए दोबारा फोन करिए, अब उठा लेंगे, आदत है उनकी, एक बार में अनॉन नंबर का फोन नहीं उठाते हैं। अर्पिता जी ने तो उसको फटकार ही लगा दी। आरवी ने बेमन से दोबारा फोन लगाया और मन ही मन बोला, भगवान जी ये दानव फोन ना उठाएं प्लीज, बेचारी भगवान से मिन्नतें करने लगी। वहीं शान ने दोबारा वही नंबर देखा तो उसने कुछ सोचकर फोन पिक किया और उसकी ठहरी हुई रौबदार आवाज आरवी के कानों में पड़ी। हेलो, बेचारी आरवी के कानों में जैसे ही उसकी आवाज पड़ी उसकी जान सूखने लगी, दिल जोरों से धड़क उठा, जुबान से ही नहीं निकले। कहां वो दुआ मांग रही थी कि वो फोन ना उठाए, और उसने तो फोन उठा लिया। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस ना पाकर शान हल्के गुस्से में बोला, कौन है? अगर बोलना नहीं है तो फोन करके मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? वो फोन काटने ही वाला था कि आरवी एकदम से बोल पड़ी, मैं हूँ। मैं कौन? शान ने भौहें उचकाई। आरवी ने खुद को शांत करते हुए कहा, आरवी। नाम सुनकर एक पल को शान की सांसें भी थम गई। ये उम्मीद तो नहीं थी उसे, पर उसने अपने भाव जाहिर नहीं होने दिए और हमेशा वाले सख्त लहजे में बोला, कहो क्यों फोन किया है और मेरा नंबर कहाँ से मिला? अंशु ने बताया, वो बड़ी माँ पूछ रही हैं कि आप अभी तक नहीं आए हैं, कब तक आएंगे? सब इंतजार कर रहे हैं आपका खाने पर। उसकी बात सुनकर शान ने अपनी कलाई को घुमाकर वॉच में टाइम देखा, फिर सोचते हुए बोला, मुझे अभी वक्त लगेगी, तो सबको कहो कि मेरा इंतजार ना करे और अंशु को भी खाना खिलाकर सुला देना। जी, इतना कहकर आरवी ने झट से फोन काट दिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी, जैसे बात करते हुए उसने अपनी सांसें रोक दी हों। अर्पिता जी ने उसे देखकर सवाल किया, क्या हुआ बेटा, क्या कहा उन्होंने? आरवी ने अब सबको देखा तो सब उसे ही देख रहे थे, फिर सहजता से बोली, उन्हें आने में देर होगी तो कहा है कि आप सब खाना खा लें, उनका इंतजार ना करें। हमें कह दिया है कि इंतजार ना करें और खुद भूल गए कि उन्हें अकेले खाना अच्छा नहीं लगता, अगर हमने खा लिया तो खुद भूखे ही सो जाएंगे। इनका भी हमें कुछ समझ नहीं आता, इतना काम करने की क्या जरूरत है कि अपने शरीर पर ही ध्यान ना दे सको, उन्होंने परेशान होकर कहा, फिर उठते हुए आगे बोली, आप सब खाइए, हम उनका इंतजार करेंगे, सारा दिन काम करके आएंगे तो उन्हें भूखा तो नहीं छोड़ सकते। उनकी बात सुनकर आरवी कुछ परेशान हो गई और कुछ देर सोचने के बाद बोली, बड़ी माँ आप सबके साथ डिनर कर लीजिए, मुझे वैसे भी अभी भूख नहीं है तो मैं उनका इंतजार कर लूंगी। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे खिल उठे, यही तो वो चाहते थे कि दोनों में से कोई तो आगे बढ़े, और आज आरवी ने शान के ना सही पर उनके लिए शान के लिए कुछ करने के लिए हामी भर दी थी, ये उनके लिए खुशी की बात थी। अर्पिता जी वापस बैठ गईं, सबने डिनर किया, आरवी ने अंशिका को खिलाया, फिर अपने रोज के काम निपटाने के बाद अंशु के पास बैठी नॉवल पढ़ने लगी। थकान के वजह से उसे नींद आने लगी तो वो बैठ के पीछे सर टिकाए बैठे बैठे ही सो गई। हाथ में पकड़ी बुक अब गोद में रखी थी, अभी भी उसने उसे पकड़ा हुआ था।
रात के 1 बजे शान घर आया। सब नौकर भी सो चुके थे और वो थक भी गया था तो अपनी टाई ढीली करते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। रूम में कदम रखा, इसके साथ नजरें सामने बेड पर बैठी बैठी सो रही आरवी पर चली गई। कितनी मासूम और प्यारी लग रही थी वो सोते हुए। घुंघरेले बालों को खोला छोड़ा हुआ था जो उसकी पीठ और कंधे से आगे कमर तक फैले हुए थे। उनकी कुछ घुंघरेली लटें उसके माथे और गाल पर अटखेलियां कर रही थीं। शान ने बैग टेबल पर रखा और कोट उतारते हुए उसके पास पहुंच गया। उसने कोट बेड पर रखा और उसके पास आकर खड़ा हो गया। खुली बुक को उसके हाथ से निकालकर बंद करके टेबल पर रख दिया, फिर उसकी तरफ कदम बढ़ाए। वो उसे ढंग से सुलाने के लिए आगे बढ़ा पर फिर कुछ सोचकर रुक गया और उसके आगे चुटकी बजाते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, अगर सोना है तो ढंग से सो जाओ। आरवी कुछ देर पहले ही सोई थी, उसकी नींद अभी कच्ची थी और शान की आवाज से तो वो गहरी नींद से भी हड़बड़ाकर जाग जाए। अभी तो वो ढंग से सोई ही नहीं थी। जैसे ही उसके कानों में शान की आवाज पड़ी और दिमाग ने काम करना शुरू किया, उसने झटके से अपनी आंखें खोल ली और उसे अपने पास खड़ा देख हड़बड़ाहट में सीधे बैठते हुए बोली, आप कब आए? यहां बैठे बैठे क्यों सो रही थी? गिरकर अपना सर फुड़वाने का इरादा है क्या? शान ने उसके सवाल का जवाब देने की जगह उल्टा उसी से सवाल कर लिया। उसकी बात सुनकर आरवी ने झट से सफाई दी, नहीं, वो मैं आपका इंतजार कर रही थी तो बैठे बैठे आंख लग गई। तो मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? शान ने एक और सवाल दागा। अब तक आरवी खुद को संभाल चुकी थी, अब उसने आराम से जवाब दिया, मैं नहीं करती तो बड़ी माँ करती, उनकी उम्र हो गई है, इतनी रात तक भूखे रहना और जागना उनके लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें खाना खिला दिया। वैसे भी तब मुझे भूख नहीं थी। आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना गर्म करके लगा देती हूँ। इतना कहकर उसने जाने के लिए कदम बढ़ाया तो शान ने पीछे से कहा, मुझे ताज़ा बना खाना खाना पसंद है। आरवी ने चिढ़ते हुए सवाल किया, तो बता दीजिए आपको क्या खाना है, वरना आप इतनी रात को मुझसे जाने कितनी बार खाना बनवा लेंगे। शान कबर्ड की तरफ बढ़ते हुए बोला, जो बनाना हो बना लो। आरवी ने घूर कर उसे देखा, फिर मुंह बनाकर वहां से चली गई।